Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 4, presented by Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Om Dhyaye Nityam Mahesham Rajat Giri Nibham ചാരുചന്ദ്രാവതംസം രത്നാകൽപോജ്വലാംഗം പരസ്മൃഗവര ഭീതിഹസ്തം പ്രസന്നം പദ്മാസീനം സമന്തത് സ്തുതമമരഗണിർവ്യഗ്രകൃത്തിം വസാനം വിശ്വാദ്യം വിശ്വവന്ദ്യം നിഖിലഭയഹരം പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിനേത്രം നാരായണം പദ്മഭവം വസിഷ്ഠം ശക്തിം ച തത്പുത്ര പരാശരം ച വ്യാസം സുഖം ഗൗഡപദം മഹന്തം ഗോവിന്ദ യോഗീന്ദ്രമതാസ്യ ശിഷ്യം ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യമതാസ്യ പദ്മ പാദം ച ഹസ്താമലകം ച ശിഷ്യം തന്തോടകം വാർത്തികകാരമന്യാൻ അസ്മത് ഗുരും സന്തതമാനതോസ്മി വിശുദ്ധജ്ഞാനദേഹായ ത്രിവേദി ദിവ്യചക്ഷുസേ ശ്രേയഃ പ്രാപ്തിനിമിത്തായ നമഃ സോമാർദ്ധധാരിണേ ഓം ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ ശാന്തിഃ. ശിവായ നമഃ ഓം ശിവായ നമഃ ഓം ശിവായ നമഃ ഓം നമഃ ശിവായ. ശിവായ നമഃ ഓം
ശിവായ നമഃ ഓം
ശിവായ നമഃ ഓം നമഃ ശിവായ. ശിവായ നമഃ ഓം ശിവായ നമഃ ഓം ശിവായ നമഃ ഓം നമഃ ശിവായ. ശിവായ നമഃ ഓം
ശിവായ നമഃ ഓം
ശിവായ നമഃ ഓം നമഃ ശിവായ. ഹരായ നമഃ ഓം ഹരായ നമഃ ഓം ഹരായ നമഃ ഓം നമോ ഹരായ. ഹരായ നമഃ ഓം
ഹരായ നമഃ ഓം
ഹരായ നമഃ ഓം നമോ ഹരായ. ഹരായ നമഃ ഓം ഹരായ നമഃ ഓം ഹരായ നമഃ ഓം നമോ ഹരായ. ഹരായ നമഃ ഓം ഹരായ നമഃ ഓം ഹരായ നമഃ ഓം നമോ ഹരായ. ഭവായ നമഃ ഓം ഭവായ നമഃ ഓം ഭവായ നമഃ ഓം നമോ ഭവായ. ഭവായ നമഃ ഓം
ഭവായ നമഃ ഓം
ഭവായ നമഃ ഓം നമോ ഭവായ. ഭവായ നമഃ ഓം ഭവായ നമഃ ഓം ഭവായ നമഃ ഓം നമോ ഭവായ. ഭവായ നമഃ ഓം ഭവായ നമഃ ഓം ഭവായ നമഃ ഓം നമോ ഭവായ. മൃഡായ നമഃ ഓം മൃഡായ നമഃ ഓം മൃഡായ
विगत एक महीने से कृष्ण यजुर्वेदीय मंत्रोपनिषद श्वेताश्वतर उपनिषद के चौथे अध्याय पर विचार चल रहा है। कुछ वक्तों की इच्छा थी ये चौथे अध्याय के जो 22 मंत्र हैं एक बार पूरे के परे आप उच्चारण कर दें ताकि हमको अभ्यास करने में सुविधा मिले। बाद में कैसेट के माध्यम से अपने घर में भी हम इन मंत्रों का अभ्यास करते रहेंगे, ऐसे कुछ भक्तों की विशेष इच्छा थी। तो पहले हम आज चतुर्थ अध्याय के शुरू से अंत तक 22 मंत्रों का सस्वर उच्चारण करेंगे, उसके बाद प्रसंगगत संदर्भिक इसकी व्याख्या करेंगे। या एको वर्णो बहुधा शक्ति योगात् आप लोग भी उच्चारण करोगे
साथ में के बाद में
आप लोग भी उच्चारण करोगे तो पूरा समय जाएगा।
हाँ वही तो
है ना, डबल होगा, 22 के थे 44 हो जाएंगे। तो हम पढ़ते जाएंगे, आप देखते जाओ, फिर बाद में अभ्यास करना। या एको अवर्णो बहुधा शक्ति योगात् वर्णान् अनेकान् निहितार्थो ददाति वीचैति चान्ते विश्वमाधौ स देवः स नो बुद्ध्या सुवया संयुनक्तु तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदुचन्द्रमाः तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म तदापस्त प्रजापति त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतो मुखा नीलः पतङ्गो हरितो लोहिताक्षस्तडिद्गर्भहरितवः समुद्राः अनादिमत्त्वं विभुत्तेन वर्तसे यतो जातानि भुवनानि विश्वा अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वहवि प्रजाः सृजमानां स्वरूपः अजो एको जुषमाणानुशेते जहत्तेनां मुक्तभोगामजन्यः द्वासुपर्णसयुजा सखाया समानं वृक्षं परिश्वस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वादुवत्ती अनश्नन्यो अविचाकसीति समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो अनीशया शोचति मुह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यनन्यमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः ऋचोऽक्षरे परमे व्योमन् यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेदुः यस्तं न वेद किं ऋचा करिष्यति या इत्तद्विदुस्ता इमे समासते छन्दांसि यज्ञः क्रतवो व्रतानि भूतं भव्यं यच्च वेदा वदन्ति अस्मान्मायी सृजते विश्वमेतत् तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम् तस्यावयवभूतेस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं स च वीचैति सर्वं तमीशानं वरदं देवमीड्यम् निचाय्य मां शान्तिमत्यन्तमेति यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यतज्जायमानं स नो बुद्ध्या सुवया संयुनक्तु यो देवानां अधिपो यस्मिल्लोका अधिश्रिताः या ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम सूक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य स्रष्टारमनेकरूपं विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिवं शान्तिमत्यन्तमेति स एव काले भुवनस्य गोप्ता विश्वाधिपः सर्वभूतेषु गूढः यस्मिन्युक्ता ब्रह्मर्षयो देवताश्च तमेवं ज्ञात्वा मृत्युपाशाच्छिनत्ति घृतात्परं मण्डमिवातिसूक्ष्मं ज्ञात्वा शिवं सर्वभूतेषु गूढम् विश्वस्यैकं परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः हृदा मनीषा मनसा विक्लृप्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति यदात्मा यदा तमस्तन्न दिवानरात्रिर्न सन्न चासच्छिव एव केवलः तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्यम् प्रज्ञा च तस्मात् प्रसृता पुराणी नैनमूर्धं न तीर्यं च न मध्ये परिजग्रभत् न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महत्यस न सन्दृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् हृदा हृदिस्तं मनसा येनम् एवं विदुरमृतास्ते भवन्ति अजात इत्येवं कश्चित् भीरुः प्रपद्यते रुद्र यत्ते तत्क्षणं मुखं तेन मां पाहि नित्यम् मानस्तो के तनये मान आयुखी मानो गोखो मानो अश्वे खुरीरिका वीरान मानो रुद्रवामितो बदिर्हविस्मत्वा सदमित्वा हवामहे बदिर्हविस्मन्तः सदमित्वा हवामहे ओम नमः इति ये कृष्ण यजुर्वेद मंत्रोपनिषद के एक अध्याय का ये उच्चारण हुआ, चतुर्थ अध्याय का ये उच्चारण हुआ। प्रसंग चल रहा था इस अध्याय के अंत में कि भगवान से प्रार्थना की गई है। प्रार्थना करने वाले दो प्रकार के भक्त हैं, एक मुमुक्षु भक्त जो इस संसार से जल्दी मुक्त होना चाहता है, दोबारे इस संसार में आना नहीं चाहता है, और जिसको ये संसार से पूर्ण विरक्ति हो गई है, और जिसको ये लग रहा हो कि ये संसार में एक एक दिन उसके लिए महाकष्ट का अनुभव हो रहा हो, तब वो व्यक्ति वो साधक बड़ी सावधानी रखता है। देखो, साधकों को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, मुमुक्षुओं को बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। हमने इतना कर लिया, अब हमारे कल्याण निश्चित है, इस भरोसे में नहीं रहना, क्योंकि आपका जीवन भर के कर कराया अंत समय में कौन सी अवस्था आ जाती है, और आपके अनेक जन्मों की जो संस्कार वासनाएं कौन सी उद्भूत हो जाती है, ये कहा नहीं जा सकता है। तब यदि शुभ वासना भगवत स्मरण हो आई, परमात्मा या जो श्रवण किया हुआ था उन वाक्य का अर्थ स्मरण हो आया, वह चिंतन निरंतर चलती रही, तब तो निश्चित उद्धार है। अन्यथा कदाचित किसी प्रसंग से फिर संसारिक पदार्थों का विषयों का स्मरण हो आया तो फिर एक समस्या हो जाती है। तब मुमुक्षु बहुत सावधान रखता है, बहुत सावधानी रखता है, रखना भी चाहिए। महात्मा लोग एक उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं। कोई एक बहुत पहुंचे हुए संत थे, वेदांत के बारे में बहुत ऊंचे विद्वान थे, शास्त्र के, वेदांत के, श्रुति वाक्यों के, पद पदार्थों का उनको खूब ज्ञान था, और उस समय उनके बराबर और कोई नहीं था, ऐसे अद्वितीय विद्वान थे, और श्रद्धा से सभी मुमुक्षु जिज्ञासु लोग उनके पास वेदांत श्रवण करने के लिए जाया करते थे। बड़े प्रेम से वो वेदांत की प्रक्रिया को समझाते थे, गहरे से गहरे रहस्य को समझाया करते थे। तब कुछ दिन के बाद महात्मा ने कहा कि देखो भैया, हमने बहुत दिन से वेदांत का विचार किया है और आप लोगों को वेदांत श्रवण कराया है, जीवन के उद्धार और जीवन का कल्याण करने वाला यही एक वेदांत है, इसका आश्रय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। रही बात, एक दो दिन से मैं ऐसा लक्षण देख रहा हूं कि अब इस शरीर का प्रारब्ध समाप्त तो होता जा रहा है। महात्मा कह रहे हैं ये बात, बड़े ज्ञानी महात्मा कह रहे हैं। ये प्रारब्ध समाप्त हो जाएगा तो फिर ये तुम्हारे हमारे बीच में जो वेदांत स्वाध्याय श्रवण मनन हो रहा है अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया ये सब अवरुद्ध हो जाएगा। फिर भी तुम लोग जो श्रवण किए हो इसकी इसका जो अभ्यास है मनन है निधिध्यासन करने का काम करते रहना, चिंता नहीं करना। ये शरीर तो उत्पन्न होता है नष्ट होता है, ये अन्नमय है, अन्न का विकार है कार्य है, जो फल पेड़ में फलता है वह कुछ दिन के बाद गिर जाता है। यदृष्टम तन्नष्टम ये नियम है शास्त्र का, क्योंकि षड्भाव विकार इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ है अतः वो अपना काम करेगा। तुम लोगों को अन्यथा नहीं होनी चाहिए, अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। महात्मा इतने अपने साधकों को शिष्यों को ये बात समझा रहे थे तो एक साधक एक शिष्य उठकर कहने लगा कि महाराज आपके चले जाने के बाद फिर हमारा क्या होगा। महात्मा ने कहा कि देखो परमात्मा बहुत ही दयालु है, सारी जगत की व्यवस्था करने वाला वही परमात्मा है। जिस परमात्मा ने तुम्हारी जिज्ञासा तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे निमित्त बनाया है, इतने साल तक मैं निमित्त बनकर तुम्हारी जिज्ञासाओं को पूरा करता रहा हूं और तुम्हारे अंदर जो जिज्ञासा बनी रहेगी मुमुक्षुता बनी रहेगी साधन चतुष्टयता यदि तुम्हारे अंदर बनी रहती है तो वो परमात्मा जरूर कहीं न कहीं से कोई न कोई व्यवस्था मिलाएगा। ऐसा नहीं कि शरीर के नष्ट हो जाने के बाद ब्रह्म विद्या के स्वाध्याय प्रवचन का काम रुक जाएगा। उसने ये व्यवस्था की है तो आगे भी वो करेगा। हमारे साथ कई बार ये होता है, जब कहीं हम प्रवचन या कोई कार्यक्रम पूरा करते हैं महीनों का और जब हम वहां से पूरा करके जाने लगते हैं तो हमारे शुभचिंतक अभिभावक कुछ भक्त लोग कहते महाराज की ये नमकीन है, ये बिस्किट है, ये है, ये आप लेते जाइएगा, वहां काम आएगा, 15-20 दिन तक खराब होने वाला नहीं है महाराज, बड़े प्रेम से कहते हैं वहां काम आएगा। तो हम कभी कभी मजाक में कह देते हैं कि भाई हम यहां से प्रवचन पूरा करके जा रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना प्रारब्ध यहीं छोड़कर जा रहे हैं। प्रारब्ध यदि यहीं छोड़कर जाते होते तो ये तुम्हारी व्यवस्था ठीक थी, क्योंकि आगे प्रारब्ध दे या न दे, खाने को मिले चाहे न मिले, इसलिए कम से कम एक महीने की व्यवस्था तो कर ही लेनी चाहिए जाते जाते। तो हम कह दिया करते हैं कि भाई प्रारब्ध भी हमारे साथ ही रहता है, प्रारब्ध यहां छूटता नहीं है। जब जिस प्रारब्ध ने एक महीना यहां व्यवस्था की है तो वो प्रारब्ध दूसरे महीने की व्यवस्था क्या वहां दूसरी जगह नहीं करेगा है? जिस प्रारब्ध ने एक महीने तक यहां सुबह की नाश्ता दोपहर का भोजन शाम का भोजन है सारी व्यवस्था उसी प्रारब्ध ने तो मिलाई है। कौन तुम्हें सुबह सुबह प्रेरित कर रहा है कि महात्मा को नाश्ता बनाकर ले चलो? महात्मा ने कहा है क्या तुम मेरे लिए सुबह सुबह नाश्ता लेके आओ? महात्मा ने कहा है कि तुम मेरे लिए दोपहर के भोजन की व्यवस्था करो? कौन प्रेरणा कर रहा है? वही प्रारब्ध, महात्मा का प्रारब्ध प्रेरणा कर रहा है। महात्मा का प्रारब्ध तुम्हें प्रेरित कर रहा है कि तुम नाश्ता की व्यवस्था करो, तुम चाय की व्यवस्था करो, तुम कपड़े लत्ते की व्यवस्था करो महात्मा की, तुम भोजन पानी की व्यवस्था करो। जब वो प्रारब्ध यहां रहकर तुम्हें प्रेरित कर रहा है तो वो प्रारब्ध हम जहां रहेंगे हमारे साथ रहेगा, वहीं आसपास में किसी न किसी को वो प्रारब्ध प्रेरित करेगा और कोई न कोई उसकी व्यवस्था का निमित्त बन जाएगा। तुम कितने दिन की जिम्मा लेने को तैयार हो बोलो? एक महीने के बाद क्या कर लोगे है? तुम्हारा नमकीन एक महीना चलेगा, दो महीना चलेगा? तुम्हारा बिस्कुट एक महीना चलेगा, दो महीना चलेगा? यदि प्रारब्ध आज ही 10 वर्ष और रहना होगा तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा 10 वर्ष तक का? तुम करोगे है? वही प्रारब्ध करना है कि नहीं 10 वर्ष तक का? आगे 10 वर्ष तक ये शरीर जीना है तो 10 वर्ष तक की व्यवस्था उसी प्रारब्ध को करनी है कि नहीं जिस प्रारब्ध ने ये एक महीना की है? तो प्रारब्ध साथ में है, इसलिए महात्मा कभी भी चिंता नहीं करता है। प्रारब्धाय समर्पितम सो बपु इत्तेसा मनीषा मम। मनीषा पंचक आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी का बहुत उत्तम है, इतना सुंदर 5 श्लोक का मनीषा पंचक है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि प्रारब्ध के जिम्मा लगा दो इस शरीर को। वही संत है जो इस शरीर को प्रारब्ध की जिम्मा लगाकर अपने निश्चिंत होकर बैठता है। महात्मा कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रारब्ध से यह शरीर आरंभ हुआ, प्रारब्ध से यह शरीर जन्मा है और प्रारब्ध जब तक रहेगा तब तक यह शरीर टिकना है। प्रारब्ध के समाप्ति होने के बाद सब शरीर समाप्त होना है, तब फिर तुम क्यों मत्तापच्ची करते हो? प्रारब्धाय समर्पितम सो बपु, ये शरीर उसके जिम्मा लगा दो भाई, प्रारब्ध के जिम्मा लगा दो। तो वह जहां भी जब भी जैसे भी व्यवस्था करता है करेगा, इसको अन्यथा नहीं लेना। ये संतों का अनुभव है। भगवान आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज अपने साधक सन्यासियों को कहते, विशेष करके सन्यासियों को कहते हैं कि अरे सन्यासियों, सन्यास लेने के बाद बस अपने जीवन प्रारब्ध को हम समर्पित कर देना, और कदाचित कहीं भूख प्यास लगी तो जहां तुम उपस्थित हो वहीं भिक्षा मांग लेना। भिक्षौ सदम भुज्यताम क्षुद्व्याधिश्च चिकित्सताम प्रतिदिनम भिक्षौ सदम भुज्यताम स्वादुअन्यम न तु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। अच्छे भोजन की कामना कभी नहीं करना, प्रारब्ध से जो प्राप्त होता है उसी से संतोष कर लेना, और इस तरह कालक्षेपण करते रहना। एक बात विश्वास में रहना कि तुम इस दुनिया के किसी भी कोने में जाओ भूखों मरना नहीं पड़ेगा। परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाओ भूखों मरना नहीं पड़ेगा। एक दिन की व्यवस्था न हो, दो दिन की व्यवस्था भले ही न हो, तीसरे दिन तो आपकी प्राण रक्षा के लिए वह विश्वंभर परमात्मा कुछ न कुछ व्यवस्था मिला देगा, कुछ न कुछ। ये बात अलग है कि आप जैसा चाहते हो वैसा भले ही न मिले, लेकिन जो आप चाहते हो वह प्राण रक्षा के लिए नहीं, आप तो स्वाद के लिए चाहते हो। आप जो भोजन चाहते हो वो अपने स्वार्थ के लिए, प्राण रक्षा के लिए नहीं है। प्राण रक्षा के लिए तो कोई भी कुछ भी मिल जाएगा, चना हो जाए तो प्राण रक्षा हो जाएगी, सत्तू हो जाएगा तो प्राण रक्षा हो जाएगी, बाजरे के 4 दिन 5 दिन की बासी रोटी हो जाए तो प्राण रक्षा हो जाएगी,